हम सफर न्यूज रूम से मैं अंबिका, पेश हैं समाचार। आज दिन मंगलवार, तारीख 3 जून 2025। मॉन्ट्रियल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि पिछले साल क्यूबेक के लोगों को प्रांत के इमरजेंसी रूम्स में इलाज के लिए औसतन 5 घंटे 23 मिनट तक का इंतजार करना पड़ा। अर्थशास्त्री और रिपोर्ट के लेखक ने कहा है कि लंबे इंतजार के समय केवल संख्या ही नहीं है बल्कि वास्तविक कनेडियंस हैं जिन्हें गंभीर देखभाल प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें अनावश्यक दर्द या परेशानी हुई। सभी प्रांतों में वेटिंग टाइम आज 5 साल पहले की तुलना में बदतर है। इसका ये स्पष्ट संकेत है कि हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली रोगियों को समय पर देखभाल प्रदान करने में संघर्ष कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में क्यूबेक के ईआर रूम्स में जाने वाले एक औसत रोगी को पिछले वर्ष की तुलना में 10 मिनट अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी, जो पिछले 5 वर्षों में 1 घंटे की वृद्धि को भी दर्शाता है। क्यूबेक में सबसे लंबे समय तक ईआर रूम्स में रहने का समय लवाल 8 घंटे, लॉरेंशियन 7 घंटे और मॉन्टेरेजी 6 घंटे और 55 मिनट में था। मॉन्ट्रियल में पेविलॉन अल्बर्ट प्रिवॉस्ट मानसिक स्वास्थ्य आपातकालीन कक्ष में 13 घंटे और 5 मिनट के साथ सबसे लंबे वेटिंग टाइम्स बताए गए। इसके अलावा MUCH रॉयल विक्टोरिया हॉस्पिटल में 10 घंटे और 33 मिनट और साउथ शोर में शैटगे में 10 घंटे और 26 मिनट के लंबे वेटिंग टाइम्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं। कुछ कर्मचारियों का कहना है कि वे ताइगा में काम कर रहे थे, जो नौकरी से निकाले जाने के लगभग 1 साल बाद भी अपने उस सेवरेंस पैकेज का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें प्रॉमिस किया गया था। कुछ लोगों ने बताया कि वे खुद को दोष स्थानांतरण और कॉरपोरेट खामियों के चक्र में फंसा हुआ पा रहे हैं, जबकि उनके चेक नहीं भेजे गए हैं। पिछले साल जनवरी और जुलाई के बीच क्यूबेक की कंपनी, जो जेट स्की, स्नोमोबाइल और अन्य मोटर चालित वाहन बनाती है, इन्होंने कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया था क्योंकि ये अपना अस्तित्व तो बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 10 जुलाई को ताइगा ने दिवालियेपन के लिए अर्जी दी थी। कैनेडा स्थित ये कंपनी इलेक्ट्रिक स्नोमोबाइल, वाटरक्राफ्ट और ऑफ रोड वाहन बनाती है। ब्रिटेन के उद्यमी स्टीवर्ट ने इसे अक्टूबर में खरीद लिया था और दिवालियापन की देखरेख के लिए डेलॉइट को नियुक्त किया था, जिसमें कर्मचारियों ने अपना विच्छेद भुगतान यानी कि सेवरेंस पैकेज प्राप्त करने के लिए फेडरल सरकार का रुख किया था। दिसंबर में एक अदालत ने आदेश सुनाया था कि कर्मचारी कैनेडा के WEPP के लिए एलिजिबल होंगे और लगभग $8,000 के वेतन के हकदार होंगे। प्रवक्ता के अनुसार WEPP उन कर्मचारियों को सहायता प्रदान करता है जिन्होंने किसी कंपनी द्वारा दिवालियापन घोषित करने के बाद रिसीवरशिप में प्रवेश करने के कारण अपनी नौकरी खो दी है। फरवरी में कुछ लोगों ने आवेदन करना शुरू किया ये सोचकर कि उन्हें भुगतान मिल जाएगा, लेकिन अब तक उन्हें इस बारे में कोई अपडेट नहीं दिया गया है। कुछ अन्य समाचारों में 2024 में यौन उत्पीड़न के दोषी ठहराए गए क्यूबेक के पूर्व चिकित्सा विशेषज्ञ स्टीफन प्रॉप्स्ट ने आत्महत्या कर ली है। पूर्व डॉक्टर पर 7 महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के नए आरोप लगाए गए थे। प्रॉप्स्ट पर कथित पीड़ितों पर हमला करने, उन्हें नशीला पदार्थ देने का प्रयास करने का आरोप था। वे पिछले मार्च में मॉन्ट्रियल कोर्ट हाउस में पेश हुए थे और उनका मामला इस सप्ताह अदालत में वापस आने वाला था। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार 2003 से 2020 के बीच लगभग 20 वर्षों की अवधि में उन्होंने कई कथित यौन हमले किए थे। प्रॉप्स्ट को उनके मुकदमे के लंबित रहने तक विभिन्न शर्तों के साथ रिहा किया गया था। मॉन्ट्रियल के अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म रेंटल्स पर साल में 9 महीने के लिए प्रतिबंध लगाने वाले नए नियमों के साथ आगे बढ़ रहा है, जिससे आवास की कमी को कम करने और अनधिकृत लिस्टिंग के खिलाफ लंबी लड़ाई में एक झटका लगने की उम्मीद है। मार्च में नगर परिषद ने एक नया बायलॉ पारित किया था जो लोगों को 10 जून से 10 सितंबर के बीच केवल टॉप पर्यटन सीजन के दौरान 31 दिनों या उससे कम अवधि के लिए अपने मुख्य आवास को किराए पर देने की अनुमति देगा। उन्हें शहर से $300 का परमिट भी प्राप्त करना होगा और प्रांत के साथ रजिस्ट्रेशन करने के लिए पिछली आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। आवास के प्रभारी पार्षद ने कहा है कि पिछले नियमों को लागू करना कठिन था क्योंकि कुछ संपत्ति मालिकों को ये बताकर जुर्माने से बचने की अनुमति दी गई थी कि उनके किराए की संपत्ति उनका मुख्य निवास है। नए नियमों को प्रांत के पर्यटन विभाग के साथ Airbnb जैसे प्लेटफॉर्म से भी प्रतिरोध मिल रहा है, जिनका दावा है कि वे शहर की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएंगे। अगले सप्ताह से मेट्रो और बस सेवा में महत्वपूर्ण कटौती के बारे में यात्रियों को चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि रखरखाव कर्मचारी हड़ताल के कारण मॉन्ट्रियल में यात्रा करने में कुछ परेशानी का अनुभव करेंगे। ध्यान दें कि मॉन्ट्रियल ग्रैंड प्री के दौरान कोई सेवा बाधित नहीं की जाएगी। 29 मई को रखरखाव कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ ने घोषणा की थी कि वे हड़ताल पर जा रहे हैं और उन्होंने शुरुआत में से एक दिन के लिए मेट्रो को बंद रखने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। अब बताया जा रहा है कि सिंडिकेट डू ट्रांसपोर्ट डे मोहियाल के बीच एक नए समझौते की समीक्षा के बाद ये बताया जा रहा है कि मॉन्ट्रियल में पीक आवर्स के अलावा आवागमन 9 से 17 जून तक जटिल होगा। बस सेवा में कटौती 9 से 11 जून तक, बस सेवा केवल सुबह 6 से 9:15 तक और फिर शाम को दोपहर 3 से 6 बजे तक जारी रहेगी। इसके अलावा 12 जून को सुबह 6:15 से 10:15 तक और फिर शाम को 3 बजे से 7 बजे तक नियमित सेवा दी जाएगी। एसटीएम के अनुसार इन घंटों के अलावा बस प्रतिशत ने केवल 50% तक की ही कटौती की जा रही है। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैर आनंद सांगरी द्वारा आज सीमा सुरक्षा पर संघीय सरकार के अगले कदमों को स्पष्ट करने के लिए एक नया विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। हाल ही में क्राउन स्पीच में कनाडा की सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कानून बनाने और पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लिए नया उपकरण बनाने का वादा किया गया था। सरकार ने यह भी कहा है कि कनाडा सीमा सेवा एजेंसी CBSA को निर्यात के लिए निर्धारित माल की जांच करने की नई शक्तियां भी दी जाएंगी, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह समझाने का काम किया जा सके कि कनाडा ड्रग्स और प्रवासियों के दक्षिण की ओर प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं। इस बीच पिक्की माकामा की क्री नेशन के नेता अब भी कम्युनिटी के कुछ सदस्यों को सुरक्षित निकालने के लिए इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका कहना है कि आपातकालीन दल बेकाबू जंगल की ओर से लड़ रहे हैं और चीफ का कहना है कि वे उन निवासियों से नाराज हैं जिन्होंने इसे छोड़ने से इनकार कर दिया है। विनिपेग से लगभग 520 किलोमीटर उत्तर में समुदाय में हुई इन दोनों ओर आग लगी हुई है और इसमें कुछ हाईवेज भी बंद किए गए हैं। इस समय जंगल की आग से आसमान धुएं से घिरा हुआ है। बताया जा रहा है कि दूरी होने के बावजूद कुछ लोग अपने घरों से और इसको छोड़ने के लिए इनकार कर रहे हैं। 28 मई को समुदाय के लिए अनिवार्य इवैक्यूएशन नोटिस जारी किया गया था और कुछ निवासियों को विमान से बाहर निकाला गया था, लेकिन तेज हवाओं और धुएं के कारण उड़ानें रोकनी पड़ी और हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा था। ये थे अब तक के समाचार। ज्यादा समाचारों के लिए जुड़े रहें रेडियो हम सफर से।